کے موضوع کے حوالے سے جیسا کہ بڑا کلیئر ہے کہ اس وقت ہمیں اس موضوع پہ بات نہیں کرنی کہ شام میں جنگ کی شروعات کیسے ہوئی اور سولین جنگ جو ہے وہ ایک ملیٹنسی میں کیسے بدلی اور پھر دنیا بھر سے ملیٹنٹس کو یہاں پہ کیسے کلیکٹ کیا گیا، ترکی کا رول کیا تھا، سعودی عرب کا رول کیا تھا، بارڈرنگ کنٹریز کے اندر سے جارڈن کا رول کیا تھا، اس کے علاوہ عرب کنٹریز کے اندر سے بالخصوص قطر کا، یو اے ای کا، کویت کا رول کیا تھا. یہ وہ موضوعات ہیں جو تقریباً بحث ہو چکے ہیں اور ان کے اوپر ابھی دوبارہ بحث کی گنجائش نہیں. لیکن جو موضوع اس وقت پیش نظر ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم امیجن کریں کہ شام پہ حملے کرنے کا امریکہ نے اعلان کیا تھا تو امریکہ کے حملے کے بنیادی اہداف کیا تھے اس مرحلے سے اور آج اس وقت جو صورتحال ہے آن دا گراؤنڈ وہ کیا ہے اور کیا امریکہ اچیو کر سکا ہے یا امریکہ اچیو نہیں کر سکا، اس چیز کو ہمیں ڈسکس کرتے ہوئے اس چیز کو سمرائز کرنا ہے کہ بالآخر وہ کون سی چیز ہے جس کی بنیاد پر اتنی بڑی بظاہر اعلانیہ سپر پاور اپنے اعلان کرنا اہداف کو حاصل نہیں کر سکی ہے، اور وہ کون سا ایسا معنی ہے کہ جس کی وجہ سے امریکہ کو بہرحال پیچھے ہٹنا پڑے. بس جو پہلا سوال ہے آپ کا کہ شام پر حملے کی صورت میں امریکہ کے اہداف میں وہ کیا تھے، تو میں یہ عرض کروں کہ شام پر حملے پہ امریکہ کے کچھ اہداف اعلانیے ہیں اور کچھ غیر اعلانیہ اہداف ہیں. جو اعلانیہ اہداف ہیں ان میں سے یقینی طور پہ انہوں نے جو بیان کیا ہے، ظاہر ہے وہ بیان تو ایک حقیقت نہیں ہے کہ وہ شام کے اوپر حملہ کر کے بشار الاسد کی حکومت کو ٹاپل کرنے میں اور ملیٹنٹس کو مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کرنا چاہتے ہیں. یہ بات بہت ویزیبل ہے جو انہوں نے وہاں پر کہی ہے اور مختلف فورم کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ اب بشار الاسد کو جانا ہوگا اور بشار الاسد کا جانا ٹھہر گیا ہے اور امریکن مائٹ اور امریکن ملٹری مائٹ کے مقابلے میں اب کوئی اسٹینڈ نہیں لے سکتا. آپ جانتے ہیں کہ امریکہ نے تقریباً اپنے چار بڑے جہاز جن میں طیارہ بردار جہاز بھی ہیں، جن میں میزائل سسٹم سے لیس جہاز بھی ہیں، وہ وہاں پر میڈیٹرینین میں بھیج دیے تھے اور بالکل لائکلی تھا، امریکہ تقریباً تمام تیاریاں مکمل کر چکا تھا اور بالکل لائکلی تھا کہ وہ یہ جنگ کرے گا اور اس جنگ کے نتیجے میں یہ خطہ بدترین تباہی سے دو چار آئے گا. کچھ اہداف امریکہ کے غیر اعلانیے تھے جو اس نے بیان نہیں کیے ہیں، جن میں سے ایک امریکہ کے سب سے بڑے الائی اور بلکہ میں یوں کہوں کہ اس کی ناجائز اولاد اسرائیل کی بقا کا مسئلہ ہے کہ اسرائیل کے ایک بارڈر کے اوپر پہلے ہی پرابلمس کریٹ ہو چکی ہیں مصر کی صورت میں، اور پھر ان کا خیال یہ تھا کہ اگر وہ حکومت کنٹینیو رہتی ہے تو عین ممکن ہے کہ وہ ہمارے لیے مزید پرابلمیٹک ہو، وہاں پر رجیم چینج کی انہوں نے. اور دوسرا بڑا بارڈر کہ جو اسرائیل کا ٹارگٹ میں بڑا معنی ہے، رکاوٹ ہے گریٹر اسرائیل کے اہداف میں، جو اسرائیل فرات کے پانیوں تک آنا چاہ رہا ہے، تو اس کا راستہ، واحد راستہ اگر کہیں سے ہو کر گزرتا ہے تو وہ سیریا سے ہو کر گزرتا ہے. خود اسرائیل کی اپنی بقا کا مسئلہ اس کے بارڈرز کے اندر لائی کرتا ہے کہ اگر بارڈر سیف ہوں تو اسرائیل باقی رہ سکتا ہے بظاہر، اور اگر بارڈر سیف نہیں ہوں تو اسرائیل ظاہر بظاہر بھی باقی نہیں رہ سکتا ہے. پھر یہ کہ اس خطے کے اندر مقاومت اسلامی جو بہت قوی اور مضبوط ہو چکی ہے، مزاحمت اسلامی خواب و فلسطین کے اندر ہے، خواب و لبنان کے اندر ہے اور خواب و شام کے اندر ہے، یہ ظاہر ہے کہ وہ اس کو چینج کرنا چاہتے تھے اور مقاومت اسلامی کو کمزور کرنا اور اس کو ایک گہرا شاک پہنچانا، یہ ان کا ایک ٹارگٹ تھا. لیکن جو ڈکلیئرڈ ہدف ہے بیانیہ وہ یہی تھا کہ ایک نیو مڈل ایسٹ قائم کرنا، جس کے لیے پہلے کنڈولیزا رائس، اس سے پہلے امریکن پریزیڈنٹ بش اعلان کر چکے ہیں کہ ہم ایک نئے مشرق وسطی کو ترتیب دیں گے، اور وہ ایسا مشرق وسطی کہ جو امریکن خوابوں اور امریکن خواہشات، اسرائیل کے اہداف کی عکاسی کرتا ہو. ایسے حکمرانوں کو لانا، ایسے کوریڈورز ڈیولپ کرنا، ایسے رستے ڈیولپ کرنا اور اس پورے خطے کی لوکیشن ایسے ڈیولپ کرنا کہ امریکن اہداف جو ہیں ان کو مٹیریلائز کیا جا سکے، یہ ظاہر ہے ان کا ایک اعلانی ہدف تھا. لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ اپنے ان اہداف میں سب سے بڑا ٹول جو وہ یوز کر سکتا تھا، آن دا گراؤنڈ یوز کر سکتے تھے انہوں نے نیٹو کو یوز کیا، آن دا گراؤنڈ یوز کر سکتے تھے انہوں نے اپنے پورے سپائی سسٹم کو یوز کیا، آن دا گراؤنڈ انہوں نے دنیا کے تقریباً کوئی 50 کے لگ بھگ کنٹریز سے ملیٹنٹس کو یوز کیا، یورپین کنٹریز سے ملیٹنٹس کو یوز کیا. آج فرانس نے آپ کے علم میں ہوگا کہ کہا کہ ہمارے 150 سے زیادہ فرینچ جو نیشنل ہیں وہ وہاں پر لڑ رہے ہیں، آپ جانتے ہیں امریکن نیشنل وہاں پر مارے گئے ہیں. تو یورپ سے بھی انہوں نے باقاعدہ طور پہ جو ملیٹنٹس ہیں ان کو وہاں پر پلیس کیا تاکہ وہ بشار الاسد کی حکومت کو ٹاپل کرنے میں باقاعدہ رول پلے کریں. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تمام ان کا سپائی سسٹم, ان کی یہ تمام مختلف جگہوں سے ملیٹنٹس کو لانا, القاعدہ نے امریکن سپورٹ کے ساتھ پاکستان میں, افغانستان میں, عراق کے اندر, لیبیا کے اندر اور تیونس میں جیلیں توڑی ہیں. بن غازی کی جیل توڑی ہے, تاجی کی جیل توڑی ہے, ابو غریب کی جیل توڑی ہے, ڈی خان کی جیل توڑی ہے, اور ان تمام علاقوں سے ملیٹنٹس کو لے کر وہ وہاں پر گئے ہیں تاکہ بربریت اور وحشت کے ذریعے سے عوام کو بھی خوف زدہ کریں اور بشار الاسد کو بھی کارنر کریں. لیکن پریکٹیکلی وہ اس میں کامیاب نہیں ہو سکے ہیں. البتہ اگر جزوی حد تک کامیاب ہوئے وہ یہ ہے کہ اسلام کا ایک ایسا بھیانک چہرہ جو امریکی ہدف ہے دنیا کے سامنے پیش کرنا کہ جس کا حقیقی اسلام سے کوئی تعلق تو نہ ہو, لیکن ان لوگوں کو جو اپنے زندہ ضمیری کی بنیاد پر اسلام کی طرف متوجہ ہونا چاہتے ہیں ان لوگوں کو خوفزدہ کیا جا سکے, اسلام سے دور کیا جا سکے. اس ہدف میں ایک جزوی کامیابی بہرحال امریکہ کو حاصل ہوئی ہے کہ امریکہ, سعودی عرب, ترکی اور ان گلف اسٹیٹس کی اس ایکویشن نے مل کر وہاں پر ہم نے دیکھا کہ صحابی رسول حجر بن عدی کے مزار کو مسمار کیا گیا, جناب سیدہ زینب اسلام اللہ علیہ کے مزار عطر پہ حملہ کیا گیا, اور پیغمبر کے ایسے صحابی کے جس سے پیغمبر کی محبت مترشح تھی ویسے کرنی, ان کے مقدس مزار کو مسمار کیا گیا, اور جناب میسم تمار کے مزار کے اوپر ناپاک جسارت کی گئی. تو اس سے ان کا یہ چہرہ بہرحال پوری دنیا کے سامنے ضرور آیا اور یہ ایک امریکی اہداف میں ایک مائل سٹون تھا. لیکن اب سوال یہ ہے کہ کیا امریکہ کے اہداف حاصل ہوئے, اور اگر نہیں ہو سکے تو بنیادی رکاوٹ کیا بنی ہے. میں اس میں آپ کے لیے عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ چائنا ہے کہ جس کی وجہ سے امریکہ آگے نہیں جا سکا. بعض لوگ کہتے ہیں نہیں, رشیا ہے کہ رشیا نے تمام انٹرنیشنل فورم, G20 کا فورم ہے, یونائٹڈ نیشن کا فورم ہے, اس طرح دیگر جتنے ادارے ہیں اور فورمز ہیں, ان فورمز کے اوپر رشیا نے ریٹیلیٹ کیا ہے, اور رشیا جو ہے وہ معنی بنایا ہے, اور رشیا کی جنگ اور جوابی رد عمل کے خوف سے جو ہے وہ امریکہ پیچھے ہٹا ہے. میں اس میں بڑا کلیئر یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ ایک متھ ہے, اور امریکہ, رشیا نے امریکہ کو پلیس ضرور دی ہے اور اس کو صرف پیسے ضرور دیا ہے, لیکن حقیقت یہ نہیں ہے کہ یہ جنگ جو ہے وہ رشیا کی وجہ سے ڈائیورٹ ہوئی ہو اور رشیا کی وجہ سے امریکہ جو ہے وہ پیچھے ہٹا ہو, بلکہ اصل چیز اس خطے کے اندر ہے مقاومت اسلامی. مقاومت اسلامی ہر مرحلے سے زیادہ مضبوط ہو کے نکلی ہے, ہر امتحان سے جب وہ نکلی ہے تو زیادہ مضبوط ہو کے نکلی ہے, اس نے زیادہ منظم اور زیادہ مضبوط رول پلے کیا ہے. تو معذرت, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس مرتبہ بھی مقاومت اسلامی اس امتحان سے بہت مضبوط ہو کے نکلی, اور عملاً امریکہ نے یہ باور کیا کہ اگر وہ شام کے اوپر حملہ کرتا ہے تو جو مزاحمت کا بلاک ہے جس میں ایران ہے, جس میں سیریا ہے, جس میں لبنان ہے, جس میں حزب اللہ ہے, جس میں حماس ہے اور جہاد اسلامی کے گروہ ہے, یہ اگر جواباً ریٹیلیٹ کرتے ہیں تو امریکہ کے لیے اسرائیل کو سیف گارڈ کرنا بھی مشکل ہے, خطے میں اپنے انٹرسٹ کو سیف گارڈ کرنا بھی مشکل ہے. اور پھر یہ خوف کہ میں نے ہارتیز اخبار میں جو ایک آرٹیکل پڑھا کہ یہ خوف کہ حزب اللہ کی خاموشی کے پیچھے کون سا طوفان کار فرما ہے, یہ خوف بہت زیادہ تھا کہ یہ مزاحمت کا بلاک کیسے ریٹیلیٹ کرے گا, کس نوعیت کی ریٹیلیشن اس کی طرف سے آئے گی. چونکہ آپ جانتے ہیں کہ مزاحمت کے بلاک نے اگر خود سے بحری بیڑا نہیں بنایا ہے تو, لیکن بحری بیڑے کو تباہ کرنے والی چیزیں ضرور بنائی ہیں, خود سے سیٹلائٹ نہیں بنایا ہے تو سیٹلائٹ شکن چیزیں بنا لی ہیں, خود سے مثلا اس نے F-16 نہیں بنایا ہے اور B-52 نہیں بنایا ہے لیکن B-52 کو ہٹ کرنے والے چیزیں تیار کی ہیں, اس نے خود مرکاوا نہیں بنایا ہے لیکن اینٹی مرکاوا میزائل تیار کی ہیں. تو خود مزاحمت کا بلاک اس انتظار میں تھا کہ اگر امریکہ یہ اٹیک کرتا ہے تو وہ بھی اپنے ایکسپیریمنٹس کریں گے, وہ بھی باقاعدہ طور پہ جو آج تک نہیں کر سکے وہ کھل کھلا کے کرنے کی پوزیشن میں ہوں گے. تو یہ خوف امریکہ کے لیے بہت بڑی وجہ بنا. پھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ امریکنز رہبریت کو مانیٹر کرتے ہیں کہ رہبر معظم کا کیا بیان آیا, رہبر معظم نے کیا کہا. اس مرتبہ رہبر معظم نے جس طریقے سے کھل کر کہا کہ سب سے بڑا لوزر اگر اس جنگ کا کوئی ہوگا تو بلا شک و شبہ وہ امریکہ ہوگا. یہ ریئلائز کیا ہے امریکہ نے کہ اگر آن دا گراؤنڈ کو اسالٹ کرتے ہیں تو وہ بشار الاسد کو نہیں ہٹا سکیں گے, وہ ملیٹنٹس کو بھی مضبوط نہیں کر پائیں گے, اور جو ویک ہوگا وہ اسرائیل ویک ہوگا, نہیں بچا سکیں گے تو وہ آئرن ڈوم کو نہیں بچا سکیں گے, सकेंगे, नहीं बचा सकेंगे तो वो पैट्रियट मिसाइल सिस्टम को नहीं बचा सकेंगे। और जो चीज़ हावी हो जाएगी इस जंग के बाद, अगर इस खित्ते के अंदर हिजबुल्ला और हिजबुल्ला से मरबूत ताकतें और इनकलाब इस्लामी का फलाक ये अगर मजबूत होकर निकलता है, तो फिर उसके बाद अमेरिका के लिए कोई जाए पनाह इस खित्ते में बाकी नहीं रहेगी। ये वो रियलाइजेशन है जिस पर पहुंचने के बाद अमेरिका ने सेफ पैसेज मांगा है और रशिया ने वो सेफ पैसेज दिया है कि और खुद जाहिर है खुद इनकी अपनी ख्वाहिश है शामी गवर्नमेंट की कि उनके जो कीमियाई हथियार है वो इंटरनेशनल मॉनिटरिंग में आ जाए, ताकि आइंदा अगर कोई मिलिटेंट उसको यूज करे तो फौरी तौर पे ये बात डिक्लेयर हो जाए कि शाम के जो केमिकल वेपन्स हैं वो तो इंटरनेशनल मॉनिटरिंग के अंदर है, बस आज अगर किसी ने कोई केमिकल वेपन यूज किए हैं तो वो मिलिटेंट्स हो सकते हैं, बस यही एक्शन फिर मिलिटेंट्स के खिलाफ डिमांड करना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि ये मुजाहमत का बलाक है जो उसे इस जगह पर लाया है कि अमेरिका को स्टेप बाई स्टेप पीछे हटना पड़ा, पहले यूनाइटेड नेशन से पीछे हटना पड़ा, फिर नेटो से पीछे हटना पड़ा, फिर यूरोपियन अलाइंस से पीछे हटना पड़ा और सिर्फ दो कंट्रीज उसके साथ रह गए, और आज फिर ये कैफियत आई कि अमेरिकन सेनेट के अंदर और अमेरिकन आवाम के अंदर जो जितने सर्वे वहां पर सामने आए उन तमाम सर्वे में ये बात सामने आई कि अमेरिकन आवाम इस नई जंग में किसी तौर अमेरिका के साथ नहीं खड़े हैं। बस ये खौफ और ऑन द ग्राउंड जो कैफियत थी इस चीज ने अमेरिका को इस हद तक पीछे आने पर मजबूर किया, और जाहिर है कि इसमें एक कंट्रीब्यूशन है रशिया की चाइना की, लेकिन जो बेस प्रोवाइड किया है आप जितना भी बड़ा कंट्रीब्यूटर लेकर आए अगर ऑन द ग्राउंड आप मजबूत नहीं हैं तो फिर कोई बड़ा इंटरनेशनल फोरम आपको बचा नहीं सकता है। फिर ये कि एक सवाल है कि हालिया सूरत में कौन कामयाब है और कैसे, ये बात बड़ी विजिबल हो गई। रशिया के बाद खुद शाम ने यह कह दिया था कि हम भरपूर तरीके से आमादा हैं और अगर अमेरिका ये जंग करता है तो हम उसको जवाब देंगे। बस शाम अपने इस मौकफ पे कायम रहा है आखिरी लम्हे तक, लिहाजा शाम मजबूत होकर उभरा है। लबनान में हिजबुल्ला ने कहा कि ये जंग हमारी जंग है और हम इस जंग को आखिरी लम्हे तक लड़ेंगे, और आगा हसन नसरुल्ला ने यह कहा कि मैं आपसे इस जंग में फतह का वादा करता हूँ। ये बात भी बड़ी विजिबल है कि आज तक हसन नसरुल्ला ने कोई ऐसी बात या ऐसा दावा नहीं किया है जिसे वो अमली ना कर सके हों। बस ये बात भी बावरशुदा है कि जो उन्होंने कहा है वो यकीनन उसके ऊपर अमल हो गया है और ये फतह की तरफ एक कदम है। फिर हिजबुल्ला ने 2006 में ये कहा था जब कॉन्डोलिज़ा राइस ने कहा कि हम न्यू मिडिल ईस्ट जो है वो तरतीब दे रहे हैं और ये इसकी बर्थ पेन है, तो हिजबुल्ला ने कहा था कि ये न्यू मिडिल ईस्ट बनेगा लेकिन वो मिडिल ईस्ट नहीं बनेगा जो आप चाहते हैं, बल्कि वो मिडिल ईस्ट बनेगा जो इलाके की मुजाहमती कुव्वतें चाहती हैं, जो इंकलाब इस्लामी चाहता है। आज का जो नया मिडिल ईस्ट बन रहा है जिसके अंदर इराक भी शामिल हो रहा है, जिसके अंदर इंशाल्लाह लबनान भी शामिल हो रहा है, जिसके अंदर सीरिया भी शामिल हो रहा है, ये नया मिडिल ईस्ट जो है वो अमेरिका के लिए नाकाबिले बर्दाश्त है और ये जो तश्कील दे रहा है ये मुजाहमत का बलाक तश्कील दे रहा है। बस मैं समझता हूँ मुजाहमत का बलाक बहुत मजबूत होकर उभरा। जो जराइम है इन मिलिटेंट्स के जो पूरी दुनिया से इन्फिल्ट्रेट किए गए, उनके जराइम पूरी दुनिया के सामने आए, उनकी खयानतें पूरी दुनिया के सामने आई और बहुत सारी चीजें क्लियर हुई, अमेरिका का और अलकायदा की एफिलिएशन क्लियर हुई। और अभी तो बाद रिपोर्ट्स आपने शायद देखी होंगी वो आ चुकी हैं कि जिसमें पूरी दुनिया में अलकायदा की फंडिंग के सिरे या कतर से मिलते हैं या यूएई से मिलते हैं और या सऊदी अरब से मिलते हैं, और फिर इनकी उन कंपनियों का नेटवर्क जो इनको फंडिंग प्रोवाइड करते हैं उनके सिरे व्हाइट हाउस से जाकर मिलते हैं। तो ये बड़ा क्लियर है कि ये अमेरिका और ये मिलिटेंट्स बुनियादी तौर पर एक ही चीज है और ये एक दूसरे के मुश्तरक आदाब के लिए काम करते हैं। इनकी राह में अगर कोई रुकावट है तो इस्लाम मुहम्मदी है, और इस्लाम मुहम्मदी को अगर कोई रिप्रेजेंट करता है तो ये मुजाहमत का बलाक जो है वो रिप्रेजेंट करता है। तो मैं समझता हूँ कि मुजाहमत का बलाक बहुत मजबूती के साथ अब दोबारा सामने आया है और अब ये ख्वाब एक ख्वाब ही रहेगा। अब किसी पॉलिटिकल ट्रांजिशन के बगैर शाम का मसला हल नहीं हो सकता है, और पॉलिटिकल ट्रांजिशन जो है वो एक, चूंकि अभी कुछ अरसे बाद शायद इंतखाबात आने वाले हैं और बशर अल असद ने ऐलान किया कि वो इलेक्शन के लिए तैयार है, अब इलेक्शन की जो सूरत हाल है कि जो लोग बशर अल असद के एरिया के अंदर है वो तो उसके इस वक्त साथ है ही है, जो लोग मिलिटेंट्स के एरिया के अंदर है उन्होंने वहां उनके जो मजालम देखे हैं वो अब उनके साथ नहीं है, और वो लोग जो कैंप्स के अंदर है उन्होंने पूरी इंटरनेशनल जो दुनिया है और बिलखसूस यूरोपीय यूनियन और यूनाइटेड नेशन की जो रिफ्यूजी कैंप्स हैं उन्होंने उनका जो रद्द अमल देखा है, जो अमल देखा है, जो तर्ज अमल देखा है, जो सलूक देखा है, जो रेप्स वहां पर हुए हैं, जिस तरीके से उनको ह्यूमिलेट किया गया है, जिस तरीके से उनकी इज्जत नफ्स को पामाल किया गया है, कतान मुमकिन नहीं है कि वो लोग किसी भी कीमत पर मिलिटेंट्स के साथ खड़े हों। उनके पास अगर कोई ऑप्शन है, पोलिटिकल ऑप्शन है, तो वो भी मौजूदा पोलिटिकल रजीम है और पोलिटिकल ट्रांजेक्शन ही इस रस्ते का हल है। तो मैं समझता हूँ कि जो मिलिट्री ऑप्शन था वो मुकावमत इस्लामी ने उसको वाइप आउट कर दिया है, और फिर एक बात, जैसा कि आपने कही कि क्या क्या एक्सपोज हुआ है, जैसा मैंने कहा कि एक्सपोज हुआ है अलकायदा, एक्सपोज हुई है अलकायदा और अमरीका का जॉइंट वेंचर एक्सपोज हुआ है, इसी तरीके से तुर्की एक्सपोज हुआ है कि जो इस वक्त आलमी इस्लाम की लीडरशिप का रोल लेना चाहता है कि तुर्की इस वक्त कितना मकरू रोल प्ले कर रहा है शाम के अंदर, तो वो एक्सपोज हुआ है उसने जिस तरीके से मिलिटेंसी को रवाज दिया है। फिर अगर एक्सपोज हुआ है तो वो इन अरब कंट्रीज का, तीन अरब कंट्रीज का किरदार जो मैंने आपके सामने बयान किया वो एक्सपोज हुआ है, जिन्होंने हजारों लोगों के जो कातिल हैं वो भी सऊदी अरब बनता है, जिसने यहाँ पर मिस्र के अंदर जो कत्लेआम है उसके भी जिम्मेदार रही हैं, और शाम के अंदर भी जो कत्लेआम है उसके भी जिम्मेदार रही हैं। तो ये बातें बहुत क्रिस्टल क्लियर हो गई हैं। और अमेरिका का ये चेहरा कि जैसा कि इराक के अंदर आपने वेपन ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन का बहाना बनाया और हमला कर दिया, तो यहाँ पर भी आप क्या ऐसे ही करना जा रहे हैं, ये चेहरा भी अब लोगों के लिए क्लियर हुआ। और इसलिए पहली मरतबा नेशनल और इंटरनेशनल किसी फोरम पर भी अमेरिकन रजीम को सपोर्ट हासिल नहीं हुई है। ये वो चेंजिंग हैं जो इसके नतीजे में आई हैं, और ये वो चीज़ें हैं जो दुनिया के लिए इस वक्त वाजे हुई हैं। फिर एक क्वेश्चन जो आपकी तरफ से है कि पाकिस्तान में जो रद्द अमल रहा और पाकिस्तान का रोल क्या है इस सारे मरले में, मैं उसमें ये अर्ज करूं कि ताहाल पाकिस्तान की राय आमा शामी हुकूमत के साथ है, चूंकि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी अवाम एंटी अमेरिका हैं, अमेरिका का वजूद बर्दाश्त नहीं करते हैं, लिहाजा वो तमाम पार्टियां कि जो किसी तौर इन मिलिटेंट्स की सपोर्ट करती हैं या करना भी चाह रही हैं, उनके लिए भी अमलन इम्कान नहीं हुआ है कि वो अमेरिका के पलड़े में अपना वजन डालें, बल्कि अमलन उन्हें भी मुजामत इस्लामी की या कम अज़ कम वहाँ पर न्यूट्रल रहना पड़ा है या अमरीका की मुखालफत करनी पड़ी है, उनके अंदर ये हिम्मत नहीं हुई है कि वो अमेरिका की हिमायत करें। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के जो ऑफिशियल मौकफ रहा है वो भी बड़ा जेन्युइन रहा है, तो पाकिस्तान ने कहा है कि हम शाम के मामले में किसी भी गैर मुल्की मुदाखलत के हामी नहीं हैं, किसी भी जंगी जरिए से और मिलिट्री के जरिए से इसके मसले के हल के हामी नहीं हैं। लेकिन ये बात है कि जो इन अपेरेंट है, जो इन रियल बात है वो ये बात भी है कि बहरहाल पाकिस्तान से ताजिक भी गए हैं, उज़्बक भी गए हैं, अरब भी गए हैं, अफगानी भी गए हैं, पाकिस्तानी भी मिलिटेंट्स गए हैं, और वहाँ पर जाकर उन जंगी जराइम में ये लोग भी भरपूर तरीके से मुलव्वस हैं, और ये जो जेल ब्रेक्स हुई हैं इन जेलों से भी ये लोग वहाँ पर गए हैं। तो इस हवाले से बहरहाल स्टेट रिस्पॉन्सिबल होती है कि क्यों पाकिस्तान की सरजमीन एक दूसरे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल हुई, और क्यों ये सिलसिला अभी भी जारी है, और क्यों अभी भी मिलिटेंट्स को ये वे जो है वो प्रोवाइड किया जा रहा है। और ये बात तयशुदा है कि बिलाखिर वहाँ पर तो दहशतगर्दों ने हारना है और शिकस्त उनके मुकद्दर में लिखी हुई है, लेकिन उसके इम्पैक्ट और असरात भी उनके हारने के बाद, और वो गम गुस्सा अगर कहीं निकलना है तो वो पाकिस्तान में निकलना है, दहशतगर्दों ने निकालना है। बस ये हमारे लिए एक लम्हा फिक्री है, और मैं समझता हूँ कि इस मौजू पर जो हमारे लॉ एनफोर्समेंट और हुकूमत का किरदार है जो गैर एलानिया किरदार है, लेकिन ये एक ओपन सीक्रेट है, वो किसी तौर पर भी मुनासिब और अच्छा नहीं रहा। अब एक आखिरी सवाल आपका था कि आलमी सतह पर आइंदा के इम्कान क्या हैं, तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त तकरीबन अमेरिका के गुब्बारे से, अमेरिकन मिलिट्री माइट के गुब्बारे से हवा निकल गई, और अमेरिकन अपनी उस वर्ल्ड पावर होने के जोन में जिस तरीके से इदारों को बाईपास करते हुए किसी मुल्क को रोंद डालते थे, उन्हें पता चला है कि ये लीबिया नहीं है, उन्हें पता चला है कि यहाँ पर सद्दाम हुसैन नहीं बसता, उन्हें पता चला है कि ये तालिबान का अफगानिस्तान नहीं है, यहाँ मुकावमत इस्लामी है जो अमेरिका के मुकाबले में लड़ने का 30 साल तजर्बा रखती है, और जो इस्लामी असूलों के पासदार भी हैं, लिहाजा ऑन द ग्राउंड वो अचीवमेंट नहीं कर सकते, और ना ही अब वो इंटरनेशनल फोरम्स को उस तरीके से यूटिलाइज करके अपने हाथों को आगे बढ़ा सकते हैं। बस जिस नतीजे पे ला के खड़ा कर दिया मुजामत इस्लामी ने, वो यही है कि अब आपको पॉलिटिकल सलूशन की तरफ आना पड़ेगा, जल्द आएं या बदीर आएं, इस कुत्ते में मजीद खान और खोक के साथ मजीद खूनरेजी के साथ आएं या किसी पुरम नजरिए के साथ आएं, और मुजामत इस्लामी उस वक्त तक जान नहीं छोड़ेगी जब तक इस खित्ते में कि बिलाखर इसराइल के मुकाबले में मुजामत इस्लामी बहुत मजबूती के साथ बैठी है। बस ये जो इस जादूगर, जैसे हम पुराने जमाने में सुनते थे जादूगरों की जान तोते में हुआ करती थी, अमेरिका की जान जिस तोते में, उसका नाम इसराइल है, इस वक्त उस इसराइल की गर्दन, इस वक्त अगर मैं कहूँ कि हिजबुल्ला और हमास के हाथ में है और मुकावमत इस्लामी के हाथ में है, तो बिल्कुल शक शुबा नहीं है। बस अब जिनको भी आना होगा जल्द या बदीर, उन्हें ऑन बोर्ड ऑन टेबल बैठ कर ये डिसीजन करने होंगे। अब ये डिसीजन जो है वो जंग के साथ, सिवाय खूनरेजी के इजाफे होने के, अब ये डिसीजन जो है वो नहीं हो सकते हैं। इसमें चार शेयर होल्डर्स थे, इसराइल एक शेयर होल्डर था, और इसराइल का जो आयरन डोम सिस्टम है और इसराइल का मिरकावा सिस्टम है वो नाकाम हो चुका है, और अगर कोई एक गैर मुतवक्के जंग होती है तो हिजबुल्ला पहले से ऐलान कर चुकी है कि अगर गलती से भी एक मिसाइल चला तो हमारा पहला निशाना अगर कोई बनेगा तो वो तल अबीब बनेगा, और ये अमलन करेंगे। लिहाजा इसराइल अब कोई इसराइल अपनी औकात में आ रहा है। फिर आपने देखा कि मुकावंद इस्लामी जाहिर है बहुत मजबूत हुई है, और पहले अगर हम कहें कि हिजबुल्ला या मुकावंद इस्लामी एक बॉर्डर के ऊपर थी तो अब गोलान हाइट्स भी हिजबुल्ला के कंट्रोल में है, और खुद शाम के अंदर भी इस वक्त इस मुजामत के ब्लाक ने बहुत मजबूती हासिल कर ली है। फिर यानी मुजामत का ब्लाक पहले से कई गुना कभी होकर सामने आया है, और अमेरिका और प्रो अमेरिका उनके चेहरे से नकाब भी उतरा है, अवामी नफरत का भी इजाफा हुआ है, और सऊदी अरब तुर्की कतर ये सब मंसूर हुए हैं अवाम के अंदर, कहीं भी इनको आप पसंदीदगी की निगाह से नहीं देखा जा रहा। और शाम मैं समझता हूँ कि इस क्राइसिस से बहुत इज्जत और सरबुलंदी के साथ निकला है, और अब आइंदा का शाम जो है वो मजीद मजबूत शाम होगा, और शाम की फौजों को एक एतमाद मिला है, शाम के इदारों को एक एतमाद मिला है, शाम के पॉलिटिशियंस को एक एतमाद मिला है, और जो अपोजिशन नाम ने उन्होंने बनाई है उसे अपनी पोजिशन का भी अंदाजा हुआ है कि वो कहाँ खड़ी है। बस जो फ्यूचर डिवेलप हो रहा है वो ये हो रहा है कि इसराइल और प्रो अमेरिका ब्लॉक वीक से वीक तर होता जा रहा है, मुजामत इस्लामी शाम लबनान और प्रो मुजामत ब्लॉक जो है वो मजबूत से मजबूत तर होता जा रहा है, अवामी हिमायत इसे ज्यादा हासिल होती जा रही है, और अवामी हिमायत ही डिसीजन मेकर हुआ करती है अगर ताईद गैबी इंशाल्लाह उसके साथ हो। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त शाम में अब अगर कोई फैसला करने वाला है तो वो मुजामत इस्लामी है या वो है जो मुजामत इस्लामी की बैक करने वाले हैं। मैं अगर ये कहूँ तो बेजाना होगा कि शाम की ये जंग शाम की हुकूमत ने नहीं जीती, शाम की ये जंग ऑन बोर्ड शाम के लोगों ने भी नहीं जीती, फतह उनकी ज़रूर है लेकिन शाम की इस जंग को जीतने में अगर किसी का किरदार है तो वो इनकलाब इस्लामी और इनकलाब इस्लामी के रहबर का है, कि जिसके नतीजे में आज ये पोजिशन हुई है कि अमेरिका को बदतरीन हजीमत से दो चार होना पड़ा है, और मुजामत इस्लामी मजबूत तर होकर खत्ते में सामने आई है, और अब अमेरिका के मफादात वाकईतन एक खतरे से दो चार हैं हो गए हैं। हमें यकीन है कि ये इसके मुकाबले में अब फिरका वाराना फसादात कराने की कोशिश करेंगे, पैसे की इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश करेंगे, मीडिया के जरिए पोलराइजेशन क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन बहरहाल अब इनके लोग भी मुशख्खस हो गए हैं, इनके बड़े भी मुशख्खस हो गए हैं, इदारे भी मुशख्खस हुए हैं, और अब ये बड़ी कमजोर जमीन के ऊपर हैं, और इंशाल्लाह मैं समझता हूँ एक इब्तदाइया कम अज़ कम ज़रूर पूरा हुआ है कि ये वो सरजमीन है कि जिसे तमाम आलमी मजाहिब ने तब्दीली की सरजमीन कहा गया है, ईसाइत की हो, यहूदियत की तरफ से हो या इस्लाम की तरफ से हो, और हम ये समझते हैं कि इंशाअल्लाह उस आलमी तब्दीली के लिए एक कदम अव्वल बहरहाल ज़रूर रखा गया है जिसके नतीजे में यहाँ पर मुजामत इस्लामी मजबूत हुई है, और इंशाअल्लाह उस आलमी तब्दीली के लिए यहाँ से ज़मीन असाजी हो सकेगी।